एक राजा था, उसका नाम था सुबुद्धिना, सुबुद्धिराज। वो जमींदार टाइप के थे, जमींदार। उनको वर्ष में 1-2 या 4 लाख रुपया राजा को देना होता। राजा था हुसैन शाह बादशाह, उस समय बंगाल का, जिसमें ये अभी राजा नहीं था हुसैन शाह बादशाह, दूसरा कोई राजा था, उसके अधीन सुबुद्धि राजा थी और उनका कर्मचारी ये हुसैन शाह था, समझे। एक मुसलमान कर्मचारी था इनके अधीन, बड़ा हुनहार मुसलमान था वो। उन्होंने उसको खजाना वसूल करने के लिए उसको नियुक्त किया। 4 लाख उस समय का सम रुपया वसूल करके और सब हजम कर गया, बुद्धि राजा को नहीं दिया, सुबुद्धि राजा उसको कुछ न कुछ देना चाहिए, आधा भी देता था कोई बात नहीं थी, उसने सब हजम कर लिया। उन्होंने उसको बुलाया, अरे तू बड़ा दुष्ट है, तुम्हारे ऊपर हमने विश्वास किया और समस्त राज ये खजाने को मैंने तुम्हारे ऊपर में भार दे दिया, तो तुमने एक पैसा भी मुझ दिया, तू अकेले खा गया। अच्छा देखो, तुमने अपराध किया है कि नहीं, तो अपराध हजूर किया, ठीक, इसका मैं दंड देता हूं, आइंदे से ऐसा कान पकड़ो जो मैं नहीं करूंगा। बस उन्होंने कोड़े मंगाए, घोड़ा वाला कोड़ा, आजकल वो कोड़ा दिखता नहीं, और सपाट से एक कोड़ा मारा यहां से और नीचे तक, एकदम खाल उठ गई एक कोड़ा, जाओ छोड़ दिया, फिर से काम करना, किंतु हमको तुम्हारा जो चौथाई भाग है वो ले लेना और 3 भाग हमको तुम दे देना। कान पकड़ करके उनके सामने स्वीकार करके वो चला गया। कुछ दिनों के बाद में यहाँ की नौकरी छोड़ करके जो इनके ऊपर वाले बादशाह था उसके पास में वो चला गया और धीरे धीरे उनको कत्ल कर और खुद वो राजा बन बैठा बादशाह होल बंगाल का। अब सुबुद्धि राय उसके अधीन हो गए ना। एक दिन वो स्नान कर रहा था बड़े ठाट के साथ में, बेगम महारानी बेगम जी उनको स्नान करा रही थी, हजारों लौंडिया दासियां उनके चारों तरफ में पानी स्वर्ण कलश से भरकर सुंदर सुशीतल जल से उसको स्नान करा थी। बेगमा जी ने देखा, अरे तुम्हारे पीपये सा दाग क्यों देख रही हूं, और कोई बात नहीं देखो ऐसे ही होता, नहीं आपको बतलाना पड़ेगा क्यों हुआ। अरे ऐसे ही रोग तो होता ही रहता है, कुछ हो गया, ऐसे दाग आ गया, आप यदि नहीं बतलाएंगे तो मैं 20 खान करके अभी मरूंगी। 20 का डब्बा उठा लिया और खानी चली, ये बड़ी मुश्किल है, बतलाना नहीं चाहते थे। अंत में उन्होंने कहा, जी देखो मैं गुमास्ता था महाराज सुबुद्धि राय का, और मैंने सब उनका जितना खजाना था मैंने हड़प लिया, उनको नहीं दिया, उन्होंने मुझको बुला करके थोड़ा सा शासन कर दिया और मुझे क्षमा कर दी, उन्होंने एक कोड़ा मारा था उसी का दाग है। अच्छा यदि उसके प्राण अभी एक दिन के अंदर में अभी तुरंत बुला करके हमारे सामने नहीं निकाल दिया, फांसी नहीं दे दिया, तो मैं फिर अब देखो 20 में लेकर के खा रही हूं। वैसे ये तो बड़ी गड़बड़ हुई, भाई मैं इसका प्राण नहीं ले सकता, तुम जितना भी करो, तुम मर जाओ प्राण नहीं लूंगा, तो बदला लेना है तो एक बात कीजिए, उसको अपने बधने का पानी पी करके और उसको पिला दिए जिसे हिंदू धर्म उसका नहीं मिलेगा, और मुसलमान होकर के रहे तब मैं मान सकती हूँ, कहे ये बात मैं मान सकता हूँ, किंतु उसे जान से नहीं मार सकता, मैं उसका ऋणी हूँ। अंत में उनको बुलाया, अब बुला करके खुद बधने का पानी पिया और उनको जबरदस्ती महाराज आपके प्राण में ले रहा, छोड़ देता हूं, किंतु आपको मुसलमान बन कर चला, हमारी बेगम जी की ऐसी ही इच्छा। बड़ा दुखी हुआ, मर जाता वो अच्छा था, किंतु आज अपना धर्म उसको जबरदस्ती इन्होंने पकड़ करके हमारा धर्म नष्ट कर दिया। अब वो वहां से आया लौट करके अपने राजधानी में, और वहां से बनारस आया। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, हजारों पंडितों को, शास्त्रियों को बुलाया, बड़े बड़े पगड़ी वालों लोगों को बुलाया, सर वेदांताचार्य को बुलाया, सबको बुला करके पूछा जी महाराज मैं हिंदू था, मुझको पानी का बधने का पानी पिला, मैं मुसलमान हो गया, और ऐसी कृपा करके मैं फिर हिंदू होकर के अपने प्रभु का स्मरण कर सकूं। उन्होंने कहा एक बहुत सस्ता तरीका है, 1 किलो घी एकदम जल आग में एकदम खौलता हुआ रहे, और खौलते हुए घी को तुम अपने मुख में, मतलब क्या खौलता हुआ आदमी यदि पिएगा तो मरेगा नहीं। दूसरे ने कहा जैसे एक दूसरा भी उपाय है, लोहे को एकदम ऐसा तरल बना लो आग में तपाकर, जब तरल बन जाएगा तो उसके मुख में तुम अपने ढाल लो, परम पवित्र हो जाएगा। मिथिला में गया, फिर दक्षिण प्रदेश में गया, वो जहां शंकराचार्य जी का स्थान है, वो श्रीरंगम नहीं, विष्णु कांची, कांची में गया। दक्षिण भारत में वहां पर बड़े बड़े स्मार्ट ब्राह्मण लोग रहते हैं, बड़े बड़े विद्वान, उनसे पूछा कहिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, इस जन्म में तुम्हारी सिद्धि नहीं हो सकती। चैतन्य महाप्रभु उस समय में वृंदावन से लौटकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, भाव में भी घोर है, आंखों से आंखों की धारा गिर रही है, कभी कृष्ण 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 कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी वहां पर मिले हैं, उसके पहले रूप गोस्वामी मिले हैं, सारी काशी सब उमड़ पड़ी है वहीं पर महाप्रभु जी को दर्शन करने के लिए, बड़ी भीड़ लगी है। 2-4-5-6 दिन तक देखता रहा कि कैसे इनके पास में जाऊं, किसी प्रकार से थोड़ा सा समय पा करके वो झट महाप्रभु के चरणों में गया और उनके चरणों में गिर गया। बोलिए महाराज मैं क्या करूं, मैं मुसलमान हो गया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता, ये लोग कहते हैं कि घी गर्म करके लोहा गर्म करके ले लो तो पवित्र होगा, मैं क्या करूं। महाप्रभु जी ने कहा जी ये पंडित लोग बड़े बड़े पंडित हैं, कभी भागवत नहीं पढ़ा और अजामिल का उपाख्यान नहीं पढ़ा, जो आपको सुनाया ना अभी नहीं सुनाया, अरे भगवान का तो नाम ऐसा है भोग भविष्य और वर्तमान में जितने भी पाप हैं, जितना पाप भूत काल में किया अभी हो रहे हैं और पीछे भी होंगे, भगवान का एक नाम संकेत पूर्वक भी कर दे तो उसके सब जल करके खाक हो जाते हैं, उसको कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। अजामिल को देखा ना, वाल्मीकि को कितने पाप किए, जगाई मधाई ने कितने पाप किए, कहां एक क्षण में एक अपने बेटे के लिए नाम लिया, भगवान के लिए नाम नहीं। इसको कहते हैं संकेत, संकेत चंद पारिहास चंद, हंसते हुए चिढ़ाते हुए यदि कोई नाम ले। जैसे हमारे गांव में एक बूढ़ा था, गंगा नदी में स्नान करने जाता जाति का गो, वो लड़कों को देख करके वो चिढ़ा, लड़के इनको चिढ़ाते थे, वो हरे कृष्ण करते, राम राम करते, और वो लट्टिया लेकर के मारने के लिए दौड़ता उछलता कूदता, कभी लट्टिया फेंक देता, लड़के ताली बजा करके राम 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 राम, महात्मा जी राम कहो राम कहो, उतना ही बिगड़ता, किस लिए बिगड़ता, अरे ऐसे ही ये करे। इसको कहते हैं परिहास्यम, हंसी मजाक में भी कोई भगवान का नाम ले, कीर्तन करते हैं ताल स्वर को पूरा करने के लिए रामा हो रामा, ऐसा भी कर दिया था, ये ताल पूरा हो गया कर रहा है और इसको पूरा कर दिया, ऐसे भी भगवान का कोई नाम ले ले। अपनी बछड़ी का नाम रख दिया राधे, अपने कुत्ते का नाम रख दिया कुछ श्याम सुंदर काला कुत्ता, बस इतने नहीं हो गया, काम तमाम हो गया पाप का। बस एक ही चीज है, वैष्णव को भगवान को के चरणों में अपराध न हो। यदि साधु संतों की और नाम की निंदा की, भगवान की निंदा की, तो लाख बार भगवान का नाम करेंगे वो फल नहीं होगा, और यदि अपराध न हो तो इस प्रकार का नाम किया हुआ वो भी भगवान जगत से उसके पापों से तार देगा। अजामिल ने तो अपने बेटे के लिए लिया, भगवान के लिए नहीं। तभी आई हुई मृत्यु चली गई, वो मरा नहीं। नाम की महिमा जब सुना कहा अरे हमने पुत्र के लिए नारायण कहा और दम के दूत लौटा दिए गए, उन्हें मार करके विष्णु के दूते ने भगाया। यदि मैं शुद्ध नाम सचमुच में भगवान के लिए लूं तो न जाने क्या हो जाएगा। इसी तरह से तब वो जाकर के हरिद्वार में गया और संसारिक मोहन नाता सब छोड़ करके अब सचमुच में देहाभिमान छोड़ करके मैं भगवान का दास हूँ, कृष्ण ही हमारे प्रभु हैं और नारायण 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 नाम करने लगा। कुछ दिन के बाद ही भगवान के वही दूत लोग आए और आ करके उसको बैकुंठ में सीधे ले गए। आप लोगों ने सुना, ऐसे ही आप चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र में देखेंगे। उन्होंने जगत वो यदि नहीं आते जगत में भगवान का नाम इस प्रकार से प्रचार नहीं होता। आज कलयुग अपने प्रचंड स्थिति में होता, लोग अपनी लड़कियों को तभी बेच रहे हैं उनको खाते, एक तरह से खाना ही हो जाता। आज जितना चल रहा है राजनीति तो देख ही रहे हैं ना, कैसी राजनीति। आज प्रजाएं भाग रही हैं घर से कर के मारे, रसोई घर में कर, चोटी रखने में भी कर, गले में माला रखने में भी कर। ऐसा कोई चीज नहीं है जो ठाकुर की दी हुई हवा है उस पर भी आप कर लगाएंगे। गैस पर तो लगा दिया है, पानी पर कर लग गया, ये पंखे चलाएंगे, ये हवा उनके बाप की है ना किसकी है, थोड़ा सा एक पंखा ये लगा दिया और घूम रहा है, बस ये कर उनको दो, कर के मारे सब लोग पीस जाएंगे। अभी तो अभी पहली संध्या ही नहीं गई, 432,000 में से केवल 5,000 वर्ष और कुछ वर्ष गए, न जाने क्या होगा। किंतु चैतन्य महाप्रभु की यही विशेषता है कि आज नाम जगत में जैसे हो चारों तरफ में उसका प्रचार है। आप लोग गले की माला लगाने में लज्जा बोध करेंगे, करेंगी, तिलक नहीं लगाएंगे। आज पश्चात देश को लोगों को देखिए, मछली मांस और न जाने क्या खाने वाले वो लोग सब सिर मुंडन कराकर, स्त्री पुरुष बालक बालिका किशोर किशोरी गले में माला दे करके, हमारी भारतीय संस्कृति के कपड़े पहनकर, धोती कुर्ता पहनकर, साड़ी ब्लाउज पहन करके हमारी भारतीय संस्कृति को लेकर के ने? और कैसे ठाट से सिंदूर अब करने लगी और तिलक भी उसमें लगाने लगी। हम लोग तो न तो गले में माला देंगे न कुछ करेंगे। अरे नहीं तभी तो हरि नाम करो, तभी दुर्गा जी का पहले नाम, शंकर जी का लो भाई गुरु के रूप में उनका लो, कोई भी बात नहीं है, लो आदर सम्मान देते हुए। किंतु कृष्ण ही हमारे आराध्य देव हैं, उनके जैसा अंत तो बनो, हमारी प्राचीन संस्कृति को तो ग्रहण करो। इसलिए आप लोग डरने की बात नहीं है, कोई भी कुछ आप लोगों को कर नहीं देगा न कुछ दे देगा, हमारी भारतीय संस्कृति का पालन कीजिए। ऐसे ही शुद्ध नाम भगवान का पूजा। कृष्ण इस ब्रज भूमि में आए, क्या क्या लीलाएं उन्होंने की, ब्रह्मा शंकर तक भी उनकी चरण की धूली को स्पर्श करने के लिए सब समय लालायित रहते हैं। आप लोग उसी भूमि में परम सौभाग्यवान होकर के इस भूमि में आप लोग पधारे, बिना पैसा ही साधु का संग हो रहा है। यहाँ पर जो हरि कथा हो रही है ये पैसे वाली नहीं, बल्कि ये जो आया अभी तुरंत कमरा और ये क्या क्या सीबी कैंसर, लोगों का ये ध्यान आकर्षण कर देगा। भगवान ने यहाँ पर दिया है ना कैसे, ऐसा बिना मूल्य का कैसा कैसेट दिया है जो कभी ये नष्ट नहीं होने वाला, बिगड़ने वाला नहीं है। सुनो प्रेम के साथ में, वो सब आएंगे समय ले लेंगे, बर्बाद करेंगे। इसमें भी एक प्रतिष्ठा भरी हुई है, यदि प्रतिष्ठा रहेगी पीछे से हम लोग दिखाएंगे रहो कितने लोगों की भूड़ हमारी कथा में आई, ये प्रतिष्ठा से बेच जाएगा, लोगों का आकर्षण उधर में चले जाएगा। हम लोग चाहते हैं इसमें एक पैसे का भी खर्च न हो, तुलसी का पत्ता आप लोग ले आएंगे आप लोगों को दे देंगे, हमारी कथा का आप लोग श्रवण करें, हम अंत में प्रणाली निधि नहीं हम लोग चाहते हैं। उस दिन जब कथा समाप्ति होगी एक एक तुलसी का दल आप लोग ले आएंगे हमें दे देंगे, हम ऐसा चाहते हैं। आजकल कथाओं का सार सब इसीलिए नष्ट हो गया है, आप लोग उन चीजों को ग्रहण करें। अभी बतलाए ना, जो पुण्य से नहीं होगा, तपस्या से नहीं होगा, जो काम और सब कामों से नहीं होगा, भगवान के एक नाम से सब कुछ हो जाएगा। एतत् निर्भिद्यमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनाम् निपनिर्णतम् हरिर्नामानि। इस जगत में जो कोई कामना रखते हैं, जो कोई कामना नहीं रखते, जो एकांतिक भक्ति वाले हैं, जो समस्त प्रकार की कामनाओं से भरे पड़े हैं, सब लोगों के लिए बस कलयुग में एक उपाय है, कलयुग केवल नाम आधार है। इसलिए आप लोग इन चीजों को ग्रहण करें, इसी का नाम भागवत है। भागवत और दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग बड़े प्रेम के साथ में नाम का महिमा समझ करके, जो नाम नहीं करते हैं, आज से ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम भवसागर को तरने वाला और कृष्ण प्रेम को देने वाला, इस प्रेम बड़े प्रेम के साथ में ग्रहण कीजिए। और यदि कोई शुद्ध गुरु मिल जाए तो उनसे ये नाम शुद्ध ब्रह्म शब्द ब्रह्म नाम ब्रह्म के रूप में ग्रहण करके करें और जल्दी फल होगा। कोई संसार की कामना वासना न रखें और भगवान के प्रेम के लिए रोते रहते आंसुओं से और भगवान का नाम ग्रहण करें। देखेंगे कुछ दिनों में आपका हृदय कैसे एकदम बदल जाता है। कलयुग कहाँ भागेगा, पाप अपराध सब कहाँ भग जाएंगे, आप लोगों का जीवन कृतार्थ हो जाएगा। गौर प्रमानंदे मनुष्य और असुर तीनों झगड़ने लगे कि जिसके पास में रहेगा वो भव सागर से अनाथी तर जाएगा, इसलिए पूरे श्लोक हमको दे दिया जाए। देवता लोग कहने लगे, मनुष्य भी कहने लगे, देवता भी परस्पर असुर लोग झगड़ने लगे। तीनों शंकर जी के पास में गए और बोले, महाराज जी हम लोगों में झगड़ा लग रहा है, कोई शांत कर दीजिए। उन्होंने ठीक है, मैं इसका तीन भाग करके और तीनों को दे देता हूँ। शंकर जी आकर के बैठ गए, उन लोगों को भी बैठाया। उन्होंने 33 लाख श्लोक तीनों को बांट दिया। अब रह गया 1,00,000। फिर उन्होंने क्या किया, तीन भाग किए, कितना हुआ 330 और 330। फिर भी एक श्लोक बच गया। एक श्लोक बच गया। फिर जब एक श्लोक बच गया तो उन्होंने इसके चार चरण करके एक एक श्लोक दे दिया और एक चरण बच गया। एक चरण में 8 अक्षर होते हैं, इसलिए दो दो अक्षरों को दे दिया तो दो तिहाई 6 और कितना बच गया। मैं कहा कि मैं अब ये नहीं देता, ये मैंने बहुत परिश्रम किया, इसलिए दो नाम रख दिए रा। इसलिए समझो समस्त वेद शास्त्र उपनिषद जितने भी हैं, कृष्ण नाम और राम नाम ही सबके सार हैं। जो नाम कर लिया वो वेद शास्त्र पढ़ लिए, जो नाम नहीं किया उसका भागवत रामायण पुराण वेद वेदांत पढ़ना ब्रह्म ज्ञान इत्यादि बेकार का है। पुल बन रहा है रामचंद्र जी का, रावण को मारने के लिए लंका के लिए पुल बना रहे हैं। नलनी पत्थरों को स्पर्श करके, बस राम अंकित नहीं करना है, स्पर्श कर दिया और वो तैरने लगे। पुल करीब करीब बन चुका, थोड़ा सा बाकी रह गया। इतने में रामचंद्र जी ने सोचा, अरे मेरा नाम लेकर के ये पर्वत तैराते हैं, मैं कुंडी के पत्थर लेकर के डालूंगा। बस एक झाड़ी में छिप कर और एक पत्थर उठाया और समुद्र में फेंक दिया और वो डूब गया। हनुमान जी खोलते हुए राम को वहां पर, अरे प्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो तुमको कोई और काम नहीं है, हमारे पीछे पीछे लगा रहता है।
انہوں نے کہا کہ پربھو آپ کے بنا میں جیوت نہیں رہ سکتا, آپ کیوں چھپ کر کے چلے آئے, بتلائیے کیا بات ہے. تو وہ تم سے بتلانے کی بات نہیں ہے, نہیں پھر بھی بتلائیے. ارے تم لوگ تو میرا نام لے کر کے پتھروں پر رکھتا ہے, وہ پتھر سمندر میں تیرتے ہیں پانی میں, اور میں نے اٹھایا دیکھا پریکشا کی, میں نے چھوڑ دیا تو وہ ڈوب گیا. تو پربھو اس میں بات کیا ہے؟ بات نہیں ہے, میری کتنی بدنامی. انہوں نے کہا کہ پربھو ہم لوگ آپ کا نام لے کر کے ہور ساگر یہ تو سمندر ہے اس پر تیر جاتے ہیں, کنتو آپ اپنے ہاتھوں سے جس کو چھوڑ دیں گے وہ تو ڈوبے گا ہی. اس چیز کو سمجھیے, اس لیے بھگوان کے نام کی کتنی مہیما ہے. اس لیے سبھی لوگ کلیوگ کا ایک ہی نام ہے, یہ مہا منتر کہلاتا ہے, ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے, ہرے رام رام رام. اس نام کا آپ لوگ پرتی دن سبھی لوگ سے بند کریں, جیو ماتر کا پرانی ماتر کا اس میں ادھیکار ہے. تب جبھی اناچار ابھیچار سفید آلو بازار میں سستے بک رہے ہیں, ان لوگوں سے جبھی دور رہیں اور بھگوان کا نام کریں, ضرور ہی سفل ہوگا. آگ جیسے ہے جان میں انجان میں چھونے سے جلائے گی, پانی جان کر کے سم چھو یا انجان میں چھو پانی بھی جائے گی. اوشدھی جان کر کے کھاؤ یا بنا جان کر کے کھاؤ اپنا کام کرے گی, اور بھگوان کا نام چن میں کام نہیں کرے گا, ضرور کرے گا. ایسا وشواس لے کر کے بھگوان کا نام آپ لوگ کریں. وشیش کر کے جو چترکیتو مہاراج کا اپاخیان ہے اس کا سار میں کل بتلاؤں گا تھوڑے سے شبدوں میں, آج یہیں پر سماپت ہوتی ہے. کل ان کی کتھا ہوگی, پرہلاد مہاراج جی کا اپاخیان ہوگا, خوب دھیان سے سنیں گے. ایک ہمارے گرو جی پربھوپاد جی 108 بار اس کتھا کو شرمن کیا, اور جب یہ بھکتی کرنے کی لالسا ہے تو پرہلاد مہاراج جی جیسا چرتر بنے, ایسا سہسر بنے, بھگوان کے نام میں وشواس ہو. جب بھکتوں کا ایک ماتر کوئی آدرش ادارن ہے تو کس کا ہے؟ راج مہاراج کا ہے. ان کا کل اپاخیان سنایا جائے گا, نرسنگھ بھگوان کا کل آبھاؤ ہوگا, یہ سب کتھائیں ہوں گی. ابھی سریش چندر جی ایک جلدی سے کیرتن کیجیے.
جان تنیرندھسیا جانجن سلاکیا چکرتم جین تسم شری گرو نمکلپتربھ کپا سندھوبھ پتیتا پاونےو ویشنوبھو نمو نمو مہابدنائے کرشن پریم پردایتے کرشنائے کرشن چیتن نامنے گورتیجے کرشن کرونا سندھو دین بندھو جگت پتے گوپیش گوپیکا کانت رادھا کانت نمستے تپت کانچن گورنگی رادھے برنداونیشوری بشبھان سوتے دے پرنمامی ہری مادیوی کا کوبھر گد گدیا جباجا جاتے نپت بھووی دندوت ادبھتر آسیا پرشادم بودس جنس کرتوا گندھرو کے تب گنے گڑن انگ شیاملین چٹاب مندی کتےندیور جڈن جاگروتی سنگ ودتم پٹمبر شری برندارن نواسیم ہل سدامرامودر رادھا کند نیشت جلبھوج بھکتیادیپرادلکھ کھیپتا کامادترگمتی کپامی سوام شرن پرپن بندے نمستے شرن گوے گورچندرائے رادھکائے تدالیے کرشنا کرشنا. सर्वभक्ताय यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे संग नय माम जरना। ये तो पीछे सराव तो ये तो पीछे भगवान की गुरु और गौरांग की अशेष कृपा से हम लोगों का भागवत 3 दिन निर्विघ्न और सुस्त रूप से संपन्न हुआ। आज चतुर्थ दिवस, हम लोगों का कल अजामिल उपाख्यान, हरिनाम की महिमा और चित्रकेतु महाराज की कथा ये हुई। चित्रकेतु महाराज के 3 अंश किए जा सकते हैं कथाओं का। चित्रकेतु महाराज जी का पूर्व जीवन, चित्रकेतु महाराज के रूप में लड़का नहीं होने पर दुखी, लड़का उत्पन्न हुआ 5 वर्ष की स्थिति में सुंदर सुकांत लड़के को विष दे दिया, विरह में कातर हो गए, रोने की भी आने लगे, लड़का नहीं होता तो ही अच्छा था उनके समझ में आया। बाकी रहा अंगिरा और नारद जी ने उसको पूरा किया, लड़के का मोह सदा के लिए छूट गया और नारद जी की कृपा से ये चित्रकेतु महाराज बलदेव जी को उपास्य माना, शंकरसन को, और शंकर जी के गुरु भ्राता बने। ये चित्रकेतु महाराज शंकर जी के गुरु भाई हैं, वो भी राम के उपासक है, ये भी राम के उपासक है। दूसरा खंड वृत्रासुर के रूप में आए और कैसी सुंदर सुंदर स्तुतियां उन्होंने भगवान को की जो दूसरों के लिए असंभव है। इसलिए श्रीमद् भागवत के परिचय देने में उसका लक्षण बतलाया, वृत्रासुर का उपाख्यान जिसमें वर्णित हो वो श्रीमद् भागवत, दूसरी जगह में ये वर्णन नहीं किया गया है। तो इसका कुछ कारण रहा होगा, ऐसे ही नहीं लिख दिया। कारण इसका देखा जाता है, उनकी स्थितियों से समझा जा सकता है। यदि भीष्म पितामह को कृष्ण से युद्ध करने में अपने बाणों से उनके हृदय को छलनी कर दिया और कृष्ण के अंगों से रक्त टपकने लगा तो उसको भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी व्यक्ति ने, ज्ञानी भक्त ने उसको किस रूप में लिया, उसको किस रूप में लिया, उसको हमारे चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि जी ने उसको व्यक्त किया है। अच्छा, ये जो भीष्म पितामह जी थे उनको कृष्ण की बाल्य लीलाओं को ज्ञान है कि नहीं है, उनको कोई कहा होगा कि नहीं, कृष्ण की जो बाल्य लीला से आरंभ कर रास लीला हुई, यदि हम लोगों को इतना सुयोग है कृष्ण की बाल लीलाओं का, रास लीलाओं का, गोपियों के सहित उनके परस्पर अनुराग और प्रेम और प्रणय का यदि हम लोगों को है, और हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा सा लोभ हो सकता है, हो और ना हो तो दूसरी बात, तो उनको ये लोभ हुआ होगा कि नहीं। अच्छा, लोभ ना हो तो सुना तो होगा